समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर और ऐसा बहुत कुछ जो आज आपको दिन भर के लिए तैयार कर देगा। मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
नमस्कार नवीन, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड दी आकाशवाणी नेटवर्क। और जैसा कि नवीन ने आप सबको बता ही दिया है कि आज सवेरे में क्या क्या लाने वाले हैं, बट उसके साथ साथ वी विल ऑल्सो ब्रिंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 27th ऑफ नवम्बर।
तो रेणु और मैं आज आपको दिन भर के लिए तैयार कर देंगे अगले आधे घंटे में। और रेणु, अगर इस समय हमें सुनने वाले अपनी कॉफी टेबल पर बैठे हैं या ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हैं या इस समय आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आप वहीं ध्यान लगाइए जहां आप ध्यान लगाना चाहते हैं, बशर्ते कि अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर दीजिए, है ना, ताकि दिन भर के लिए हम आपको तैयार करें। और जानते हैं रेणु, हर दिन अपने आप में खास होता है और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज के साथ आज हम
शुरुआत करने वाले हैं।
शुरुआत करने वाले, तो पर्दा हटाते हैं और बताते हैं कि क्यों आज का दिन बहुत खास होने जा रहा है।
बिल्कुल। सो द फर्स्ट न्यूज इज द इजरायली गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ सीज फायर डील विद हिज़्बुल्लाह इन लेबनन। दिस वाज डिस्क्लोज बाय द इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू'स ऑफिस लास्ट नाइट। द सीज फायर डील विच वाज ब्रोकर्ड बाय द यूएस एंड फ्रांस इज एक्सपेक्टेड टू होल्ड द वॉर दैट हैज किल्ड ऑलमोस्ट 3,800 पीपल इन लेबनन ओवर द लास्ट ईयर एंड लेफ्ट अबाउट 16,000 अदर्स वूंडेड। आफ्टर अप्रूवल बाय इजरायल सिक्योरिटी कैबिनेट, French President Emmanuel Macron and his US counterpart Joe Biden issued a joint statement committing both nations to work with Israel and Lebanon to ensure the agreement is fully implemented and enforced.
वगैरह युद्ध की विभीषिका के बीच में, जबकि कितने ही हमारे ऐसे लोग जिनका कोई कसूर ही नहीं है मारे गए, लेकिन हाँ अब शांति शुरू होगी और उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त और भी पॉजिटिव होगा।
उम्मीद पे दुनिया कायम है।
बहरहाल रुख करते हैं तमिलनाडु का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तमिलनाडु की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वो आज वेलिंगटन के रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के संकाय सदस्यों और छात्र संघ के अधिकारियों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल उडक मंडलम स्थित राजभवन में नीलगिरी जिले के जनजातीय महिला स्वसहायता समूह और जनजातीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। शुक्रवार को वो तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज इश्यूड अ रेड अलर्ट फॉर हैवी रेन इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु एंड 1 डिस्ट्रिक्ट इन पुडुचेरी फॉर टुडे अहेड ऑफ द साइक्लोन फेंगुल। इट हैज इश्यूड अ रेड अलर्ट फॉर रेन फॉर मयिलादुतुरई, नागापट्टिनम एंड तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु एंड कराईकल इन पुडुचेरी। अ फ्लैश फ्लड अलर्ट हैज ऑल्सो बीन इश्यूड फॉर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। द वेदर बॉडी हैज प्रिडिक्टेड दैट द डीप डिप्रेशन ओवर द साउथ वेस्ट Bay of Bengal is likely to intensify into a cyclonic storm Fengal today. IMD has predicted isolated extremely heavy rainfall over Tamil Nadu and Puducherry today, isolated heavy to very heavy rainfall over Tamil Nadu and Puducherry tomorrow, and over Andhra Pradesh from Thursday to Saturday. Fishermen have been advised not to venture into the sea during this time. 7 teams of National Disaster Response Force NDRF have been mobilized across Tamil Nadu and Puducherry. The teams are said to be deployed in key districts including Karaikal, Tanjavur, Tiruvarur, Kadalur, Nagapattinam and Mayiladuthurai to assist in rescue and relief operations.
दोस्तों, जानते हैं कि भारत का जो पर्यटन है वो अपने आप में असीम है, विशाल है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, किसी भी मौसम में आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर इस समय दक्षिण में जा रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि रेडियो ने भी बताया है, क्योंकि वहां पे इस समय बहुत बारिश हो रही है, है ना। तो आपको हम सीधा काजीरंगा लिए चलते हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की अनंत पर्यटन संभावनाओं को उजागर करना। यह आयोजन पर्यटन व्यवसाय में लगे लोगों और उद्यमियों को साथ लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा।
And India and International Solar Alliance, ISA, have signed an agreement to execute new solar projects in Fiji, Comoros, Madagascar and Seychelles. The project implementation agreement was signed between the Ministry of External Affairs and the ISA in New Delhi yesterday. India had earlier committed to invest $2 million in new solar projects in these Indo-Pacific countries. More from our correspondent.
According to a study undertaken by the ISA, these countries have energy issues related to perishability of agricultural products and unreliable electricity supply in health centers. The ISA, as the project implementing agency, will provide programmatic assistance to Comoros, Fiji, Madagascar and Seychelles with financial support from India. Based on discussions with the project recipient countries, solar projects in the areas of cold storage, solarization of healthcare facilities and solar water pumping systems are under consideration. The successful execution of these projects is expected to enhance energy access, create employment and provide reliable and quality power supply in these Indo-Pacific countries. Solar energy is a viable solution to help these countries address climate change related challenges. Latest round of clean energy investments by India in these countries will help strengthen the commitment of the Quad to address the challenges posed by climate change and facilitate their transition to a clean energy economy. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
रेनू, हर समाज में कुछ न कुछ कुरीतियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन इन कुरीतियों से अलग निकलना और इनसे पार पाने के लिए समाज लगातार अग्रसर रहता है, प्रयासरत रहता है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ करेंगी। अभियान का जो पहला लक्ष्य है वह है देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना। इस कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया जाएगा और इस अभियान के दौरान संकल्प लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाने की आशा है। तो ये थी वो तमाम खबरें और जो आज दिनभर की बड़ी खबर बन सकती हैं। बहरहाल, अब हम आपको लिए चलते हैं मेट्रो न्यूज की तरफ।
एंड बिगनिंग इन द मेट्रो न्यूज सेक्शन, नवीन, मैं शुरू करती हूं हैदराबाद की खबरों से। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी हैज अर्ज फॉर स्पीडी अप्रूवल ऑफ की प्रोजेक्ट्स एंड हेल्ड डिस्कशंस विद यूनियन मिनिस्टर्स इन न्यू दिल्ली येस्टरडे। ही अर्ज द ट्रांसफर ऑफ ओवर 200 एकर्स ऑफ डिफेंस लैंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बापूघाट एंड परमिशंस फॉर एयरपोर्ट्स इन पलौंचा, अंतरगम, आदिलाबाद एंड वारंगल। द चीफ मिनिस्टर कॉल्ड ऑन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिक्वेस्टिंग द ट्रांसफर ऑफ डिफेंस लैंड टू फैसिलिटेट द गांधी सरोवर प्रोजेक्ट एट बापूघाट in Hyderabad, highlighting its significance as a site where Mahatma Gandhi's ashes were immersed. The chief minister proposed the development of a global hub for Gandhian philosophy. The plan includes providing a knowledge hub, meditation center, handloom promotion center, landscape ghats, a statue of peace and public spaces aimed at boosting tourism and preserving cultural heritage. During a meeting with civil aviation minister K. Ram Mohan Naidu, the chief minister detailed Telangana's industrial growth and emphasized the government's focus on improving transport infrastructure. He sought swift approvals for airport projects, underscoring their potential to enhance regional connectivity. Another news that I have is from Chennai Metro. A control room has been set up at Chennai to monitor and pass on the necessary suggestions to coordinate and take immediate action by the district authorities ahead of Cyclone Fengal. India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for heavy rain in Mayiladuthurai, Nagapattinam and Thiruvarur districts of Tamil Nadu and Karaikal in Puducherry for today. IMD has also predicted that the deep depression over the southwest Bay of Bengal is likely to intensify into a cyclonic storm, Fengal, today. Fishermen have been advised not to venture into the sea. NDRF teams and SDRF teams have been alerted and kept ready to meet any eventualities in vulnerable areas. और आपके पास चलते हैं मेट्रो न्यूज के लिए।
सीधा रुख करते हैं हम दिल्ली का
जी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC ने ट्रेन के समय की वास्तविक जानकारी और पार्किंग स्थान की उपलब्धता की जानकारी के लिए RRTS कनेक्ट ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों को टिकट बुकिंग, स्टेशन मार्गदर्शन और अंतिम गंतव्य जैसी जानकारियां उपलब्ध होंगी। अगली खबर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सक्सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि संविधान सभी नागरिकों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। और अब बात दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की। भारत मंडपम में 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन जारी है और इस मेले की जो थीम है वह है विकसित भारत 2047। 14 दिवसीय ये मेला वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के सबसे बड़े व्यापार आयोजनों में से एक है जिसमें बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं। सुनते हैं सकलिन अख्तर को।
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 में लोग बड़ी संख्या में घूमने और खरीदारी करने आ रहे हैं। बीते रविवार को 1.5 लाख से अधिक आगंतुक मेले में घूमने आए। व्यापार मेले में आए हुए लोग सूखे मेवे, बैग, पर्स, फर्नीचर के सामान, कपड़े, जूते, खिलौने, अचार, तेल, मसाले, गजक और सजावटी सामान के स्टॉल्स पर बड़ी संख्या में खरीदारी करते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों के पवेलियन, प्रदर्शनियां और स्टॉल भी आगंतुक का ध्यान खींच रहे हैं। मेले में लोगों को आकर्षित करने और अधिक से अधिक अपने स्टॉल पर बुलाने के लिए क्विज, पजल और नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया जा रहा है। घूमने के दौरान लोगों को लगने वाली भूख का खास ख्याल रखते हुए मेले में एक फूड कोर्ट भी बनाया गया है। फूड कोर्ट में आगंतुक लिट्टी चोखा, सरसों का साग और मक्के दी रोटी, छोले भटूरे, बिरयानी, घुघनी चावल, गलौटी कबाब, मछली फ्राई और डोसा जैसे विभिन्न राज्यों के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में गुरुग्राम से आए आगंतुक मनीष ने मेले में विभिन्न संस्कृतियों और व्यापार के संगम को देखने पर अपने अनुभव साझा किए। मेले में पहली बार घूमने आई एक अन्य आगंतुक अमृता ने भी अपना अनुभव साझा किया।
बहरहाल ये थे सकलिन अख्तर जो बता रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है इस समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। बहरहाल एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली का। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कल रोहिणी स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर भवन में शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज में बुलेट प्रूफ सीलिंग, 6 फायरिंग लेन और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट कंट्रोल सिस्टम जैसी तमाम उच्च तकनीकी सुविधाएं मौजूद हैं। और अब वापस रेणु के पास चलते हैं। रेणु कहां लिए चल रही हो?
मैं आपको बेंगलुरु लेके चलती हूं।
जी,
कर्नाटका लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्रीज मिनिस्टर एमबी पाटिल हैज अनाउंस्ड दैट ऑल द कंसर्न डिपार्टमेंट्स विल अडॉप्ट द न्यू सिंगल विंडो सिस्टम सॉफ्टवेयर सेट टू बी लॉन्च्ड इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। आफ्टर द न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च द प्रोजेक्ट अप्रूवल्स, इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉटमेंट्स विल बी फास्टर विद स्ट्रीमलाइंड एंड सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस। द एम्प्लॉयज ऑफ द रेलेवेंट departments looking at matters related to industries will be trained and equipped to operate the system by end of next month. The minister said that the single window system with the new software will end the ordeal of the investors requiring approvals from multiple departments and all the processes will be online. By entering PAN and Aadhaar numbers, the investors will be able to access all relevant details about their proposed projects and track its progress in various departments. The minister added this hassle-free mechanism will be transparent and efficient. And moving back to you, Naveen, what more do we have from the metros?
मुंबई चलते हैं। बृहन मुंबई नगर निगम ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास मेट्रो में वायु संचार को बेहतर बनाने और यात्रियों के लिए आराम सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम स्थापित किया है। उधर भारतीय संविधान के 75वें दिवस के अवसर पर सेंटर फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी संस्था द्वारा मुंबई में विभिन्न संस्थानों पर संविधान सप्ताह कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को संवैधानिक मूल्यों पर संवाद स्थापित करने का प्रयास किया गया। मुंबई उपनगरीय की बात करें तो पश्चिम रेलवे आज से मुंबई उपनगरीय खंड पर 13 अतिरिक्त एसी लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू करने का फैसला उसने किया है। ये नई एसी सेवाएं मौजूदा गैर एसी उपनगरीय सेवाओं की जगह लेंगी और इस शुरूआत के साथ सप्ताह के दिनों में एसी सेवाओं की जो कुल संख्या है वो 109 हो जाएगी। पश्चिम बंगाल का रुख करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में प्रशासन के शीर्ष पदों पर बदलाव किए गए हैं। खलील अहमद को उत्तर बंगाल विकास विभाग का सचिव बनाया गया है और वो गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन जीटीए का भी कार्यभार संभालेंगे। तो ये थी आपके शहर मेट्रो की खबरें। अब आज सवेरे का एक और पन्ना पलटते हैं तो नजर पड़ती है सीधा खेल की खबरों पर। और इन्हों अक्सर क्या होता है, जब भी आप अखबार पढ़ते हैं ना तो खेल का पन्ना सबसे पीछे होता है, है ना। अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अगर मुझे या तुम्हें खेल की खबरें सबसे पहले पढ़नी है तो क्यों ना ये पहले ही पन्ने पर हो,
है
ना। बहरहाल खेल की खबरों के साथ इस समय हमारे साथ मुकेश बल स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश, क्या कुछ है खेलों की दुनिया में इस समय?
नवीन, खेलों की दुनिया में सबसे पहले बात शतरंज की बिसात की। भारत के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने इटली में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तेलंगाना के दिवित ने अधिकतम 11 में से 9 अंक हासिल किए। सात्विक को रजत और चीन के जिमिंग गुओ को कांस्य पदक मिला। उधर भारत की राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया पर 4 वर्ष का निलंबन आदेश लागू किया है। 4 वर्ष की पाबंदी से बजरंग पूनिया कुश्ती प्रतियोगिताओं में वापसी नहीं कर पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग की भूमिका के लिए भी आवेदन करने से वंचित रहेंगे। बजरंग पूनिया ने राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार किया था। इससे पहले एजेंसी ने 23 अप्रैल को बजरंग पूनिया को अस्थायी तौर पर निलंबित किया था। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में मस्कट में आज शाम भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ने रिकॉर्ड 4 बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत को कोरिया, जापान, चीनी ताइपे और थाईलैंड के साथ पूल ए में रखा गया है। आज सवेरे के बाकी सफर के लिए वापस चलते हैं नवीन और रेनू के पास।
थैंक यू मुकेश। एंड नाउ नवीन, मूविंग ऑन टू इफी।
जरूर।
द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ सिनेमैटिक आर्ट, हैज ब्रॉट टुगेदर डेलीगेट्स एंड सिनेफाइल्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू द पिक्चरिस्क स्टेट ऑफ गोवा एज द 9-day फेस्टिवल नियर्स इट्स कंक्लूजन। लेट्स टेक अ लुक एट द एक्साइटिंग इवेंट्स लाइंड अप टुडे, द 8th डे ऑफ दिस सिनेमैटिक एक्स्ट्रावेगेंजा। मोर फ्रॉम आवर गोवा कॉरेस्पॉन्डेंट।
Today, an impressive lineup of 68 films is set to grace their screens, including the Tapan Sinha Directorial Harmonium as part of the centenary celebrations of the legendary filmmaker. Tapan Sinha's remarkable contributions to Indian cinema will also be honored in a special masterclass session featuring eminent speakers Arjun Chakraborty, Manu Chakraborty, and Sharmila Tagore. Adding to the festival's charms are the open-air screening at Goa's iconic beaches. Family favorites like Penguins of Madagascar, Ochai, and Kung Fu Panda 2 will be screened under the starlit sky, offering a magical cinematic experience by the sea. These screenings have provided a unique blend of entertainment and scenic beauty, making them one of the most talked about aspects of the festival. Later in the day, music and storytelling take the spotlight in a special session featuring Oscar-winning composer A.R. Rahman and renowned film critic Naman Ramachandran. Now, with just 1 day remaining, IFFI 2024 has been a resounding success, celebrating not just the diversity of Indian and global cinema, but also fostering creativity and cultural exchange. Over the past 8 days, the festival has showcased the best of world cinema, provided a platform for emerging talent, and created unforgettable memories of cinephiles. For Art Savere, with Durkesh Badoria, Omvesh Upadhyay, Goa.
खेलों की हलचल हो गई, फिल्मों की दुनिया हो गई, तो भाई अब क्या बचा? अब है मौसम का हाल।
मौसम का हाल।
दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में ठंड दस्तक दे ही चुकी है, रोज हम बता रहे हैं, और रोज हम एक एक डिग्री टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं, या यूं कहें हम नहीं, मौसम विभाग कहता है। मौसम विभाग कहता है आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक पहुंच सकता है दिल्ली का, और जो न्यूनतम तापमान है वो 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, और रेनू को देख के लग रहा है शायद 1 डिग्री और कम है।
बिल्कुल।
मुंबई की बात करें तो 33 डिग्री और 17 डिग्री रहेगा टेम्परेचर, कोलकाता में भी 27 डिग्री टेम्परेचर रहने की उम्मीद है, और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा कोलकाता में। देश के बाकी हिस्सों का हाल।
यस, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद हैवी रेन, द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 24 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 26 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन, द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 18 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 24 डिग्रीज। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज, टेम्परेचर विल हावर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 16 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 29 डिग्री सेल्सियस।
चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और समझते हैं कि आज के दिन के लिए जो हमने रिसर्च की थी उसमें से हम क्या कुछ अपने सुनने वालों के लिए निकाल कर लाएंगे।
बिल्कुल। एंड लेट मी बिगिन नवीन, बिकॉज आई एम गोइंग टू 1001 ईयर में, दैट इज ऑन दिस डे महमूद गजनवी आर्मी डिफीटेड जयपालाज हिंदुशाही आर्मी इन द बैटल ऑफ पेशावर विच इज नाउ इन पाकिस्तान यूजिंग कैवलरी एंड मिलिट्री टैक्टिक्स. द गजनवी आर्मी वॉज लेड बाय महमूद ऑफ गजनी वाइल जयपाला कमांडेड द हिंदुशाही आर्मी. लेटर ऑन महमूद इनकॉर्पोरेटेड पेशावर एंड पंजाब इन टू हिज एम्पायर एंड इट मार्क द बिगनिंग ऑफ महमूद इन्वेजन इन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट.
मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा रेनू, 1795 की बात कर रहे थे हम. बांग्ला नाटक का कोलकाता के एजरा स्ट्रीट में स्टेज पर पहली बार सार्वजनिक मंचन किया गया था. बात 1895 की, जब स्वीडन के केमिस्ट, इंजीनियर और उद्योगपति अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने अपनी वसीयत पर दस्तखत किए थे और जिसके बाद नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी.
यस एंड आई एम कमिंग टू दिस ईयर दैट इज 2024. टुडे द चंपा षष्ठी फेस्टिवल विल बिगिन एट कुके श्री सुब्रमण्य टेम्पल इन मेंगलुरु कर्नाटका एंड द सेलिब्रेशन विल लास्ट टिल द 12th ऑफ डिसेंबर. द फेस्टिवल इज लार्जली सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र to mark the victory of Lord Khandoba, an incarnation of Lord Shiva over the demons Mala and Mani.
बात 2001 की, हब्बल टेलीस्कोप ने सौर मंडल से बाहर ओसायरस ग्रह पर हाइड्रोजन मुक्त वायुमंडल की खोज की थी और सौर मंडल से बाहर ऐसे वायुमंडल वाला ये पहला ग्रह है. तो ये थी वो घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से. और अब बात उन व्यक्तियों की जो आज के दिन से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में एक छाप छोड़ी है. ऐसे में सबसे पहला नाम आता है भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक मोहम्मद अजीज का. आज उनकी पुण्यतिथि है. मोहम्मद रफी के निधन के बाद मोहम्मद अजीज की आवाज को एक नए अंदाज में जिस तरह से अजीज ने जिंदा रखा वो उन्हीं का ही नाम है. उनकी गिनती हिंदी सिनेमा के दिग्गज गायकों में होती है और 80 का जो दशक था बहुत सी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने गीत दिए थे. खूबसूरत सा गीत चुनकर लाए हैं आपके लिए. याद करते हैं मोहम्मद अजीज को.
गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का.
एंड नवीन, आज मैं जिस पर्सनालिटी के बारे में अब पढ़ने जा रही हूँ, यू नो मोर देन 40 इयर्स आफ्टर हिज डेथ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिमी हेंड्रिक्स स्टिल रिमेन्स एज पॉपुलर एज एवर विद एनुअल एल्बम सेल्स एक्सीडिंग दैट ऑफ एनी ईयर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. So, Jimi Hendrix was an American guitarist, songwriter, and singer. He's widely regarded as the greatest guitarist in the history of popular music and one of the most influential musicians of the 20th century. The Rock and Roll Hall of Fame describes him as arguably the greatest instrumentalist in the history of rock music. So, yahan pe hum jo gana apne shrotaon ko sunwa rahe hain, usme Jimi Hendrix is on the guitar, he's the lead vocalist, he's the composer, and he is the lyricist also.
Of the broken pieces of yesterday's life, somewhere a queen is weeping.
आज साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित शिव मंगल सिंह सुमन की भी पुण्यतिथि है. और इन्हों कहते हैं जिन्होंने सुमन जी को नहीं सुना वो जानते हैं कि सरस्वती कैसे नहीं बहती थी, और जिन्होंने सुमन जी को सुना वो जानते हैं कि सरस्वती कैसे बहती थी, गुप्त धारा की वाणी का दिग्दर्शन कैसे होता था. प्रसार भारती के अभिलेखागार से हमने एक चंद पंक्तियां निकालकर हम लेकर आए हैं, सुनते हैं शिव मंगल सिंह सुमन की आवाज में.
वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं. वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही. वरदान मांगूंगा, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा.
ये आवाज थी प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि शिव मंगल सिंह सुमन की. और आज मधुशाला जैसी कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन की भी जयंती है. साल 1907 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी किताब मधुशाला के बारे में हर कोई जानता है। कई भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ, लेकिन और भी बहुत सी किताबें, बहुत सी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। हम एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं और सुनवाते हैं हरिवंश राय की वो आवाज जो हमने प्रसार भारती के अभिलेखागार से चुनी है, ढूंढी है आपके लिए।
दो कविताएं आपकी सेवा में प्रस्तुत है। पहली कविता का शीर्षक है, एक लोकगीत से लिया गया है, हिया नहीं को हमार। कभी सुना था एक लोकगीत, उड़ चलो हंसा और देश, हिया नहीं को हमार। संध्या का, उदास संध्या का एक दृश्य है। उस उदासी में अपना एकाकीपन का बोध होता है और ये गीत की एक कड़ी याद आती है। उसकी प्रतिध्वनि तारे से आती है जो संध्या में डूब रहा है।
ये आवाज थी हरिवंश राय बच्चन की, और आज बप्पीदा के नाम से मशहूर बप्पी लहड़ी की जयंती है, और उनका वास्तविक नाम था अलोकेश लहड़ी। जब आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत कुछ जान पाएंगे बप्पी लहड़ी के बारे में, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक गीत आपको सुनवा रखे हैं जो उन्हीं की आवाज में है। बप्पी लहड़ी का एक छोटा सा इंटरव्यू भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपनी आवाज में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुनते हैं।
माय पेरेंट्स बोथ द सिंगर्स, अपरेश लहड़ी, माताजी बांसुरी लहड़ी, बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो आई गॉट द यू नो लाइक माय ब्लड म्यूजिक का मिला। तो तबला जो है मेरा पहला है, जो बचपन से मैं तबला सीखा, और पंडित शांता प्रसाद जी हमको तबला सिखाया। जो वो भी इंसिडेंट था, जो मैं कलकत्ता में आई वॉज प्लेइंग तबला वेरी स्मॉल, मेरा ईयर भी नहीं है। तो मम्मी कह रहे थे, जो लता जी मेरा तबला सुन के पंडित शांता प्रसाद जी को फोन किया था, जब झनक झनक पायलबाजी बन रहे थे, तो आप जाइए उधर, एक बच्चा को मैं तबला सुना और अब जाके उनको शागिर्द बनाइए। तो तबला से मेरा करियर शुरू हुआ।
ये आवाज थी बप्पी लहड़ी की, और अब बात सारंगी की।
जी, टुडे वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू उस्ताद सुल्तान खान, हु वाज एन इंडियन सारंगी प्लेयर एंड क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंगिंग टू द सीकर घराना। ही वाज अवार्डेड द पद्म भूषण, इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2010। सुल्तान खान स्टार्टेड हिज करियर एट द ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन राजकोट इन गुजरात एज अ 20-year-old बॉय इन 1960। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं नवीन यहां पे बताना चाहूंगी। ही गेव हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस एट द ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एट द एज ऑफ 11 एंड हैज परफॉर्म्ड ऑन एन इंटरनेशनल स्केल विद रविशंकर ऑन जॉर्ज हैरिसन्स 1974 डार्क हॉर्स वर्ल्ड टूर। तो देखिए कि कहां तक वो पहुंचे।
रेनू जानती है 90s का वो दौर था जब नॉन फिल्मी सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, है ना, और उसमें इनका जो नाम आता है सबसे पहले आता है।
बिल्कुल, एंड इवन इफ यू रिमेम्बर द 1982 ऑस्कर विनिंग फिल्म गांधी, उसमें भी उनका म्यूजिक है। एंड देयर आफ्टर ही रिकॉर्डेड फॉर अदर हॉलीवुड फिल्म्स सच एज हीट एंड डस्ट। एंड सुल्तान खान ऑल्सो प्लेड द सैड सारंगी म्यूजिक ड्यूरिंग द सोरफुल सीन्स ऑफ महात्मा गांधीज असैसिनेशन एंड फ्यूनरल।
पर बहुत खूबसूरत से दो गीत हम चुनकर लाए हैं, मैं और रेनू सुनते हैं।
जी,
अरे बेला सजनिया,
आज सवेरे के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये आज का अंक बहुत पसंद आया होगा। मैं नवीन और रेणु अपनी टीम एडिटर चिराग झा और प्रोडक्शन असिस्टेंट इकबाल के साथ इस खूबसूरत गीत के साथ छोड़े जा रहे हैं।
जी नमस्कार।